कृष्णवश्च कृष्णभक्ते पदे देवी सत्तवत्रे नमो नमः भक्तापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गे पामि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द भजामि राधामरविन्द नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्च वदामि राधां करुणावराद्र ततो ममान्नस्ते नवयाजे राज्यं न जनकं वाणिकं न विवं न जाजगरम्मं सकलजनकम्मं वरवधूं मे सदा काले काले प्रणोदवति न गीतचरितो जगन्नाथस्वामी नयनपथनामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर गौरवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण चरण कमल में अनंत एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथावत धन्यवाद सत्संग की महिमा में कुछ कीर्तन कर रहा था क्योंकि मानव जीवन की उद्देश्य ही है भक्ति का अपने भगवत भक्ति हो ज्ञान मुक्ति आदि के छोड़कर के भक्ति ही श्रेष्ठ बनाया गया। जब परीक्षित महाराज हरि कथा के बाद यानी श्रीमद् भागवत कथा समाप्त परीक्षित महाराज साक्षात रूप में अटल के आत्मा जो इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग आदि लोक भी पार करके ब्रह्म लोक भी पार करके मुक्ति लोक भी पार करके या तो फिर वैकुंठ को भी आगे पार करके रामलोक यानी अयोध्या के पार करके द्वारका मथुरा के पार करके कहां चले गए वृंदावन। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग दिव्य आंखों के द्वारा दर्शन करते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं संत महात्मा होते हैं उनके दिव्य नेत्र होता है दिव्य नेत्र ट्रांसेंडेंटल विजन होता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग देख करके आश्चर्य होते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं
वो भी मुक्ति प्राप्त के लिए,
वो भी कौन सा मुक्ति, संसार से छुटकारा पाने के लिए। हम लोग संसार में जो गरीब हुए, इस संसार से छुटकारा पाने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग भी कठोर तपस्या आदि करते हैं। इंद्र आदि के दमन करके हमारे सारे इंद्रियां जो है चक्षु कर्ण नासिका इंद्रिया त्वचा वाक पाद पाणी वायु और उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, और उसमें क्या रहता है, मन रहता है, एकादश इंद्रिय विषय को और योगी लोग योग आदि साधना के द्वारा जम आसन जम नियम आदि के द्वारा इंद्रियों के जो है कंट्रोल कर देते, संयत कर देते, कंट्रोल कर देते, और फिर योग आदि साधना के द्वारा मुक्ति मार्ग में जाते। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या किया, कोई योग साधना नहीं की, किसी प्रकार इंद्रियों की भी कठोर दंड भी नहीं किया, कष्ट नहीं, केवल उन्होंने 7 दिन सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुखार बिंद से भागवत कथा अच्छा जो लेना है पहले ले लो,
कथा के बीच में मत करो, अभी रुक जाओ,
परीक्षित महाराज केवल 7 दिन क्या किया, परिकथा श्रवण परीक्षित, और 7 दिन श्रवण के करने के पश्चात उनके आत्मा शरीर से निकल करके साक्षात गुरु वृंदावन के प्राप्त, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग आश्चर्य, जो मुनियों के जो बड़े बड़े मुनियों के जो दुष्प्राप्त जो है उस मुक्ति लोग भी पार करके चले गए। ब्रह्मा जी ने ऐसे विचार करके एक तराजू लाए, तराजू समझते स्केल बैलेंस, एक तरफ कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के सारे फल को रख दिया, और एक तराजू के दूसरी पल्ले में क्या रखा, श्रीमद् भागवत की रख दिया, देखा क्या श्रीमद् भागवत की पल्ला नीचे आ गया, नीचे मतलब आ गया, मतलब क्या भारी, जो भारी वस्तु होता है ना वो नीचे की तरफ जाते हैं, जो हल्का वस्तु होता है वो ऊपर, जैसे मैं हल्का हूँ मैं ऊपर बैठा हूँ, आप लोग भारी है नीचे बैठा, आप लोग कहाँ बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, हम कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, चौकी पर बैठे, चौकी हमारे कहते हैं जो जमीन पर बैठते हैं क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, अच्छा चौकी पर बैठते हैं क्या बोलते हैं, चौकीदार कहते हैं, अच्छा बताओ जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा,
चौकीदार
बड़ा, ये कैसे उल्टी कैसे बोलते हैं, चौकीदार मतलब सिक्योरिटी का, जमीन जमींदार मतलब मालिक जो होता है, जमीन जमींदार का, तो आप लोग सब जमींदार है, मैं क्या हूँ, चलो कथा में आ जाइए। ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई और उसमें एक तरफ समस्त कर्म ज्ञान जो तपस्या के फल रख दिया, और एक तरफ क्या रख दिया, श्रीमद् भागवत, देखा श्रीमद् भागवत के फल भारी नीचे की तरफ, तात्पर्य क्या है, भागवत है क्या चीज, भक्ति भागवत, प्रेमी भागवत से, वही भक्ति जो है भक्ति भाव तप करके प्रेम रूपांतरित, प्रेम तो भक्ति प्रेम जो है श्रेष्ठ बता रहे, ये भक्ति की क्या नवलक्षण भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणान्, इति पुंसा और विष्णु जब जीव सब कुछ अपने को गुरु और भगवान में जब अर्पित कर मत्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदिता आत्मा भगवान का इस संसार में जी भ्रमण करते करते अनेकों जनी भजन भ्रमण करते करते जब मनुष्य जनी प्राप्त कर लेते हैं और उस मनुष्य जनी प्राप्त करके जब सत्संग में आ जाते हैं साधु संग प्राप्त करते हैं तब बिनु सत्संग बिनु विवेक ना हो राम कृपा बिनु जब तक हम लोग साधु संग में ना बैठे सत्संग नहीं विवेक ज्ञान अच्छा बुरी ज्ञान का जिसे कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना हो और जब हम सत्संग नहीं करें बिनु सत्संग बिनु करें राम कृपा बिनु ये सत्संग जो प्राप्ति करना सत्संग मिलना ये जब प्रभु राम जी की कृपा नहीं हो हजार चेष्टा करने पर ही हम सत्संग प्राप्त नहीं कर जब प्रभु की कृपा कहीं नहीं तुम्हारे बीमारी लग जाएगी बीमारी लग जाएगा सोच रहे मैं सत्संग करूं बस साधु संत महात्मा आए हैं जाकर के बैठूं बीमारी लगा देगी जाने नहीं क्यों जब तक भगवान राम जी की कृपा नहीं हो वो सत्संग में नहीं जाता इसलिए जो लोग सत्संग में आ जाता है साधु संत संत महात्मा जी का नाम लेते हैं समझना चाहिए राम जी की कृपा इसे दूसरी दाग निकले बिनु सत्संग में विवेक ना हो राम कृपा बिनु जब तक राम जी की कृपा नहीं हो वो सुलभ नहीं कितने समय का साधु अरे एक घड़ी आधी आधी से पुनी पुनी से पुनी एक घड़ी आधी से पुनी भी सत्संग भी करे उसके जीवन सतान प्रसंगात मम बीजो संविदो भवन्ते कर्ण रसायन कथा तच्छो सनात आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा भक्ति रति रनुक्रमेशते श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध की कथा कौन सा स्कंध कपिल देव की कथा स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवती के लिए सत्संग की महिमा कीर्तन कर हे माँ जीवन में कुछ करना हो तो एक ही काम करो क्या करना चाहिए सतांग प्रसंगाद ममोवीर्य संबुदो माँ जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान आते हैं संत महात्मा की गोष्ठी में जाकर के सतंग प्रसंगवाद ममवीर जो संविदो भगवती हित कर्ण रसायन और मेरे वीरजवती कथा प्रभावशाली कथा को जो है श्रवण करो इस मेरा कथा को श्रवण करने से जन भगवत कथा श्रवण करने से आपके सारे अनर्थ पाप आदि अपने आप नष्ट हो और अंत में भगवती श्रद्धा रुधि भक्ति यानी साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति श्रीमद् भागवत में तो इतना भूरी भूरी प्रशंसा कर दिया सत्संग की महिमा बताया एक महाभारत की बताया एक बार युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के निकट जाकर के बोले प्रभु मैं एक राजस्व यज्ञ करना चाहता कौन सा यज्ञ राजस्व युद्ध की तात्पर्य जो है बड़े बड़े राजाओं के बुला करके और उस समय हरी कथा आदि कीर्तन होती राजाओं की पूर्वज और राजाओं की महिमा कीर्तन की जाती है, उसमें हवन होता है और अनेक राजाधिराज महाराज लोग आते हैं, उनके लिए खाना पीना दान दक्षिणा आदि ये सब कुछ रखता है। इसलिए कहा जाता है राजस्व प्राचीन कालों में अनेक प्रकार के जग की कथा शास्त्र में वर्णन कहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ का जैसे भगवान रामचंद्र ने कौन सा यज्ञ किया था, यज्ञ करके घोड़े का जो है छोड़ दिया उसी गले में तिलक लगा करके उस घोड़े के जो पकड़ेगा उसके परास्त करना पड़ेगा, युद्ध में उसको हराना पड़ेगा, परास्त फिर जब लौट करके आएगा फिर घोड़े के ओगरी में आम किया जाता है। ऐसे प्राचीन काल के कलिकाल में ये सब नहीं, कलिकाल में पांच प्रकार के विधि जो है वो नहीं। अश्वमेधम गर्भबाल फल पैतृक देव ऋण सुतत्पत्ति कलु पंच संस्कृत में आ रहे हैं। अश्वमेधम गबाल कलि युग में अश्वमेध यज्ञ की विधि नहीं है, घोड़े के यज्ञ जो होता है मैंने कहा केतृता युग में गोपालम अपने गायों की आहुति जैसे गोमेंद्र यज्ञ कहा जाता है। पहले पहले सत्ता आदि युग में गोमेंद्र यज्ञ आदि होता था, गायों के जो है यज्ञ में ये आहुति दिया जाता था। फिर मुनि ऋषि लोग अपने मंत्र आदि के द्वारा उस गाय को क्या कर देते थे, जीवित कर देते, नया जीवन दान देते, संभव नहीं। इसलिए गोमेध यज्ञ भी बंद हो गया और अश्वमेध यज्ञ अश्वमेधम गबालम सन्नासम परपुत्रिकम कलि युग में भी सन्नास भी नहीं है। सन्नास मतलब पीठ के समय कर्म सन्नास जो कहा जाता है, कलि युग में नौतम सन्नास व भक्ति सन्नास के बारे में शास्त्र में वर्णन है किंतु कर्म सन्नास कलि युग में अश्वमेधम गर्भ गोपाल सन्नासम फलपुत्रिकम फलपुत्र मास आदि के द्वारा पितरों के जो श्राद्ध आदि करना इसके फलपुत्र किन्तु कलिजुग में ये भी माना है। अश्वमेधम गोपाल सन्नासम फलपुत्रिकम देव रेणु सुत उत्पत्ति देव रणे सुत उत्पत्ति यानी यदि पति यदि शरीर छोड़ दे देवर के द्वारा उसके आगे की पीढ़ी यानी रखने के लिए देवरों के द्वारा पुत्र आदि संतान उत्पादन किंतु कलिजुग में ये माना इसलिए करु पंच देवर जय कलिजुग में ये पांच जो है माना है। क्या के याद है क्या के बताए बताओ अश्वमेध जब कब गोमेध जब कब और सन्यास और मांस आदि के द्वारा मांस मछली आदि के द्वारा पितरों की जो श्राद्ध और देव रेणु ये करु पंच। चलो हम जिस युग की कथा बोलेंगे महाभारत जैन दापर युग की कथा महाभारत की कथा दापर युग की कथा सबको त्रेता दापर युग की कथा जो युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट कहने लगे मुझे राजस्व युद्ध करना है तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर बात तो तुम सही बताया किंतु काम करना ये बहुत कठिन है, सरल नहीं। बड़े बड़े राजाओं के बुलाना उनके यथाजथा सम्मान देना ये कोई तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, अकेला तुम नहीं कर सकते। किंतु जीवन में तुमने जब कोई बीड़ा उठाया तो प्रतिज्ञा ले ली, अच्छी कुछ वस्तु है तो करना चाहिए। कथा प्रसंग में छोटा सा एक कथा में बल देता हूँ। रावण जब मरने वाला है, मतलब राम भगवान रामचंद्र उसके मार दिया, रावण धरती पर गए, रावण मरने वाला था, उसकी अंतिम सांस चल रहा था, सांस ले रहे थे, मरने वाला था। तो उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण थे के बोले, लक्ष्मण एक काम करो, तुम रावण के पास जाकर के कुछ ज्ञान लेकर के आओ। रावण तो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा थे, पैसा देना नहीं था रावण। रावण तो ऋषि पुत्र थे, किंतु काल क्रम से असत्संग से वो तो असुर बन गया, किंतु वास्तव रूप में रावण बहुत विद्वान भी थे, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण भी थे रावण, बहुत कठोर तपस्या आदि की साधना आदि, संस्कृत बड़े विद्वान भी थे रावण। रावण की हम निंदा करते हैं कि वो असुर है, किंतु रावण के अनेक गुण भी था भाई, एक व्यक्ति के अनेक गुण होता है, और एक छोटा दोष से उसको क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है। रावण के दोष क्या था, परस्त्री हरण था, इसलिए उसके सारे गुण नष्ट हो गए, दुराचारित आ गया। रावण महान परिक्रम पराक्रमी थे, वेरी ग्रेट पर्सन, सबके जो है जीतने वाले थे, रावण कोई साधारण नहीं है। ये भगवान के साथ जो टक्कर लेने वाला है वो भी साधारण थोड़ी हो सकता है, शेर के साथ कौन टक्कर ले सकता है, शेर शेर के साथ टक्कर ले सकता है। तो उसी प्रकार रावण विद्वान भी थे, संस्कृत के बड़े पंडित थे। रावण की शिव की स्तुति सुनोगे ना आप तो शिव घूमने रहेगा, स्वयं शिव जी प्रकट हो जाते थे। रावण के शिव स्तुति सुनोगे तो आप बता रहे रावण कितना बड़े विद्वान है, उदात्त उदात्त सरित आदि के द्वारा वो स्तप करता था, प्रातः काल में उठ करके रावण जब स्तप करते थे शिव जी की महिमा कीर्तन करते थे, स्वयं शिव जी शिवलिंग से प्रकट होकर के शिव जी त्रिशूल डमरू लेकर के नृत्य करते थे। मेरे परम भक्त मैं खुश हो गया, खुश करते परम प्रिय परम प्रिय परम रावण की ऐसी प्रतिभा था। तो रावण सब प्रकार के और राजनीतिक को भी थे, पॉलिटिशियन भी कम नहीं था, सब प्रकार के गुण तो था उसमें, लेकिन एक ही गुण क्या था, वो परस्त्री हरण कर रहा। देखो ये दुर्गुण से क्या हो गया, सारे गुण सारे गुण को उसने नष्ट कर दिया भाई। गुरुदेव उदाहरण देते थे, भले आलू की बोरी में एक सड़ा गला आलू रहे तो उस दिनों में सारे आलू के क्या कर देता है, सब नष्ट कर देता है। एक दुर्गुण जो है सारे गुण को क्या कर देते हैं, रावण की इसमें मैं रावण की कथा में कहा, यही दुर्गुण था रावण का जो परस्त्री हरण करता, जो भी नाम से है यही रास्ते था। बाकी रावण इतने महान गुणी थे, दयालु थे, दूसरे के सम्मान भी देते थे, ब्राह्मण जनों के आदर करते थे, बड़ों के आदर करते थे, सब प्रकार गुण था, त्याग वैराग्यवान भी थे, सब प्रकार के गुण, हजारों गुण उसमें। रावण की गुण के व्याख्या करो, बखान करो तो हजारों गुण को जिया चाहिए, किंतु एक ही दुर्गुण आकर के आलू की बोरी जैसे, सड़े आलू जैसे, सारे बोरी के आलू के जैसे नष्ट कर देता है। रावण की एक दुर्गुण जो है परस्त्री हरण, उस सारे गुण को वो वृंदावन बिहारी। भगवान रामचंद्र सही कहने लगे, लक्ष्मण तुम जाओ रावण के पास जाकर के कुछ ज्ञान लेकर के आओ भाई, कहीं पर किसी पास अच्छा गुण है दिखाई पड़े तो सिल लेना चाहिए है। लक्ष्मण गए, लक्ष्मण जाकर के रावण के सिरहाना पर जाकर खड़े हुए, रावण ऐसे आंख खुला फिर आंख बंद करने कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण लौट करके आ गया, बोले भैया रावण तो कुछ नहीं बोला मुझे, मैं तो खड़ा रहा आधे घंटा खड़ा रहा, एक आंख ऐसे खोला मेरी तरफ देखा कुछ नहीं बोला। रामचंद्र बोले तुम कहाँ खड़े हुए थे? बोले उनके सिरहाना पर, सिर। बोले नहीं किसे ज्ञान लेना है तो कहाँ खड़े होना चाहिए? उनके चरण के साथ जाओ, अपने अभिमान छोड़ करके रावण के चरण तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मण फिर आकर के रावण की पैर के तरफ खड़े हो गए, रावण आंख खोला, आंख खोल करके रावण मंद नमस्कार करते हुए कहने लगे लक्ष्मण मैं समझ गया प्रभु राम तुम्हें किसने भेजे। रावण अभी रावण क्या अभी स्मृति आ गया ये रामचंद्र भगवान है, पहले नहीं था, मरने वाला है ना, अभी समझ में आ गया। रावण कहने लगे लक्ष्मण राम तुमको भेजे हैं मुझसे कुछ ज्ञान लेने के लिए, मैं ही बता दूं सब मेरे जीवन की इतिहास तुमको बता देता हूँ अब तुम्हें पता चलेगा क्या। रावण ने एक बात कही, देखो जीवन में कुछ अवसर दिखाई पड़े, अवसर उसकी उस वस्तु के तुम कुछ भी करने के जा रहे हो उसको टाल देना उसको डिले कर दूंगा, चलो आज नहीं काल काल नहीं परसों ऐसे कर दूंगा, कुछ वस्तु के अवसर दिखाई पड़ रहा है उसको हो सके वो अपने आप कार्य सिद्धि होता है। और यदि कोई वस्तु आपके दिखाई पड़े अच्छी दिखाई पड़ रही है, सत्कर्म दिखाई पड़ रहे हैं उस कर्म का जल्दी ही करना चाहिए, सुक्रिय होनी चाहिए, सुक्रिय मैंने उसको स्वागत करनी चाहिए सब कोई काम। रावण अपने जीवन की इतिहास बताया, देखो मैंने जीवन में दो काम करने के लिए बीड़ा उठाई प्रतिकर्म, एक है मनुष्य के जाने के लिए मैंने स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाई। ये हमारे पास तो अनेक प्रकार दिव्य विमान भी है, मैं जदा स्वर्ग लोक में चले जाता हूँ किंतु इस स्वर्ग मनुष्य लोग जो है ये लोग स्वर्ग में कैसे जाएंगे? कोई व्यक्ति थोड़ा पुण्य करे पुण्य के फल जा सकते हैं, लोग तो जा नहीं पाए, इसलिए मैंने क्या की एक सिटी बना देता हूँ, कम से कम चट सिटी में चट 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 कर 10 साल लगे 20 साल लगे तो चलते जाइए पहुंच तो जाइए, हिमालय में लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, समय लगेगा तो पहुंच तो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा मनुष्य के लिए एक सिटी बना देता हूँ, स्टेप बना देता हूँ। इसलिए प्रतिज्ञा मैंने ले लिया और मैंने क्या की सिद्धि स्थापन कर दी, मैंने पत्थर रख करके सिद्धि बनाना शुरू। और इतने समय मेरा भाई कुलनाशिनी बहन सूर्पनखा आकर के मेरा सारे कार्य के साथ नष्ट कर दिया, सीता हरण के उजर उन्होंने मुझे सुझाव दी, सुझाव बने मुझे सुझाव दिया ये भैया उसको तुम हरण करके ले आओ, देखो परस्त्री हरण कहा मैं अच्छी काम करने के लिए जा रहे थे लोक कल्याण के लिए है? और मेरा भाई बहन ने क्या कर दिया परस्त्री हरण इसके फल सर्वास मैं सब कुछ हराया, सोने के लंका भी चला गया, मेरे भाई कुल आदि के सब मैं नष्ट कर दिया है, ये मेरा जीवन है। दूसरी मैं एक मैं भी जीवन में शपथ दिया था बीड़ा उठाई, ये सारे समुद्र के जल क्या है, खाली है, नमक। मैंने सोचा ये समस्त समुद्र के जल को मैं क्या कर दूं, मीठा पानी कर दूं। कम से कम लोग तो पानी पी सके, बारिश भी नहीं हो किसी समय, समुद्र के जल तो लोग ले सकते। इसलिए मैंने सोचा पवन देवता तो मेरा नकल है, मैं पवन देवता को मैं आदेश दूंगा, पवन देव और जल देवता तुम दोनों मिल करके सारे समुद्र के जल को तुम मीठा बना दो। आदेश देने में जा रहा था और ठीक उतनी समय ही ये सुरपन खाया दी राज दरबार और आकर के मेरे सारे इच्छा को क्या कर दिया, बस जहां पर अपशकुन परस्त्री हरणी अपशकुन है ना, बस उसमें मैं लग गया। ना समुद्र के जल में मीठा पानी बना सके और ना स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना, और जिसके लिए आज ये मृत्यु के कारण मेरी सारी लंका भी नष्ट हो गया, मेरे पुत्र पुत्र आदि से लेकर के सारी सब कुछ मेरा क्या हो गया, ध्वंस हो गया और मैं भी मरने वाला हूँ। रावण ने बहुत उपदेश दिया, यही रावण ने कहा जीवन में कई अपशकुन दिखाई पड़े उसको टाल देना, जल्दी जल्दी मत करो है? और अच्छी कोई वस्तु दिखाई पड़े उसको जल्दी ही करना चाहिए है? तो उसी प्रकार ये कथा में भगवान युधिष्ठिर महाराज के कहने लगे, युधिष्ठिर तुम्हारे विचार तो बहुत सुंदर है, है? राजस्व यज्ञ करना ये तो सबसे बड़े अच्छा पुण्य कर्म है, किंतु देखो तुम्हें मैं सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ, ये राजस्व यज्ञ करने के लिए तुम्हें तुम अकेला नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पांच भाई और पांडवों एक कौरव के 100 भाई के एक साथ में ले लो, 105 भाई मिलकर के ये राजस्व यज्ञ करो। भाई भाई में झगड़ा होता रहा था इस संसार से, संसार की नियम है, ये संसार में कोई एक साथ में कोई नहीं रहता है, मैं वो मुद्रा दिखाता हूँ ना, याद है ये मुद्रा जो मैं दिखाता रहता हूँ ये वास्तव सत्य हो जाता है, ये मुद्रा क्या है, ये मानो माता पिता है, ये छोटे उंगली जो पुत्र का नाम है, और ये जो उंगली जो है ये क्या है, ये भाई बहन का है, ये रिंग फिंगर जो है ये क्या है, एंगेजमेंट का जो है एंगेजमेंट फिंगर पर रिंग फिंगर जिसको कहते हैं ये पति रिंग फिंगर, और बाकी जो ये बीच में जो फिंगर जो है ये क्या है, ये अहम मैं, भगवान ने ऐसे पांच फिंगर बना दिया, 10 उंगली बना दी है, तात्पर्य क्या है, मैं तो ये ठीक है, ये पांचों से हम 10 के 5 कर दिया एक साथ में रहा, किंतु रहेगा नहीं, काल की प्रभाव है, एक दिन नहीं एक दिन माता पिता हमें छोड़ करके चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएगा बताओ, माता पिता चलेगे नहीं चलेगा, हमें बिछोड़ कर बिछोड़ना अकेला रहना पड़ता है, फिर जाओ भाई बहन जिसका कर विवाह शादी के बाद सब अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बहन के शादी हो जाता है, भाई के शादी हो जाता है, कर्मव्यस्त जीवन है, नौकरी आदि करने के लिए वो भी हमें घर से छोड़ कर चले, पुत्र करना है ये छोटे, ये भी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके पढ़ाई के लिए दूर देश में चले जाना पड़ता है विद्या अभ्यास करने के लिए, फिर विवाह आदि करके वो भी हमें छोड़ करके चले, अभी रह गया 2 उंगली रह गया, ये मैं हूँ और ये पत्नी मैं का, ये दोनों जो हम और हमारी पत्नी जो हम कह रहे हैं रह रहे हैं ये कब तक रहेंगे, इसका भी विचार हो रहा है, ये जब तक मैं अहम को नीचे कर देता हूँ तो ये रहता है, और जब अहम के ऊपर कर देता हूँ ना तो पत्नी भी अहंकार है, हम जब नीचे होकर के रहते हैं बिना देवी सुनी तब हमारे पास सब रहता है। जब मैं ऊंचा हो जाऊँ ना तो हमें पत्नी भी छोड़कर के चली जाए। कथा में इसलिए मैं संग कह रहा था, भगवान कहने लगे हे युधिष्ठिर महाराज तुम पांच भाई हो और दुर्योधन सौ भाई है, झगड़ा तो होता ही रहता है संसार में। मेरी कहानी की तात्पर्य विवाद मिलन विवाह विरह मिलन ये तुम चलता रहता है संसार के नियम है। किंतु जब कोई अच्छी कर्म हो काम हो सब एक साथ में करना चाहिए। दो काम में अपने भाइयों के साथ मिलकर चलना चाहिए। यदि पड़ोसी वाले की शत्रुता करें तो भाइयों भाई सब मिलकर के रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी तुम्हारे एक भाई के प्रति के वो बीच में जो है आग लगा देगी, सब नष्ट कर देगी। तीसरी दूसरी जो है घर में कोई उत्सव हो भाइयों के बुलाना चाहिए, मित्रता से तो भगवान उसी प्रकार कहने लगे, मैं जानता हूं कौरव लोग दुर्योधन आदि तुम्हारे पर ईर्ष्या रखते हैं, देश रखते हैं, सट छल कपट आदि करते कोई भी बात नहीं, तथापि तुम जब राजयोग करने के लिए जा रहे हो ये कौरवों के जनि दृष्टि आदि दुर्योधन आदि उनके स्वभाव को भुला देना, लेकर के एक साथ में ही काम करो, सबके सहयोग होना चाहिए। भगवान की इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के में बुलाए और उस सभा हुई जिस राजस्व यज्ञ होने के पहले किसके ऊपर कौन सा काम सौंप दिया जाए, ताकत चाहिए है? काम होना चाहिए। और द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी के अंश संजीवनी है, जहां पर हाथ रख देगी अपने आप सुंदर स्वादिष्ट भोजन अपने आप आ जाएगा। भगवान इसलिए कहने लगे भीम और द्रौपदी रसोई घर में जाए, मैं काम कर रसोई बनाए खाना बनाए सम्मान आदि करें। पहले बड़े राजाओं कैसे सम्मान कैसे करते थे, तीर धनुष के द्वारा, आप जानते हैं सब जानते हैं प्राचीन काल की रीतियां सब है। दापर युग आदि के मध्यता युग में बड़े बड़े राजाओं के सम्मान कैसे होता था, तीर धनुष के द्वारा तीर के द्वारा ठीक उसके चरण के सामने तीर रख देते थे, मानो प्रणाम। आइए महाराज बैठिए, नकुल सहदेव के बड़े 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 ऋषि लोग आएंगे, उसके लिए सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, रहना खाना पीना संत महात्मा के उपासना का गृह होता है ना, उपासना गृह जानते हो क्या, जहाँ पर संत महात्मा बैठ के ध्यान करते हैं, संत महात्मा भी ऐसे और संत महात्मा जगना आदि करेंगे उसके लिए सारी व्यवस्था जो कुछ जरूरत है। नकुल युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो है सब कुछ निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण समझे देखभाल करेंगे, सब कार्य ठीक से चल रहे की नहीं चल रहे निरीक्षण करना एग्जामिन करेंगे। स्वयं भगवान कहने लगे एक काम करो, दुर्योधन निशासन के जो है ये जो संत महात्मा आएंगे जो आहुत अनाहुत खाने पीने के बाद सबके दक्षिणा की दक्षिणा दी है ना, ये दोनों काम करेंगे, कपड़ा लगता दान पैसा ये सब राजकोष उनके हाथ में छोड़ दो। बस इतने सुनते ही दुर्योधन दुशासन तो ताल सुनने लगे, खुश हो गए, नार रहे बांस और नार रहे बोले क्या बात है, बोले ये युधिष्ठिर महाराज के राजकोष को बिल्कुल खाली कर देगा। दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना उसके सिंहासन पर बैठा तो बस, तो वही विचार करने लगे इनके जो युधिष्ठिर महाराज सारे राजकोष को खाली कर देंगे, पैसा नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, कोई एक व्यक्ति एक कपड़ा मांगेंगे तो दस कपड़ा दे देंगे, कोई व्यक्ति कहेंगे महाराज एक रुपया दो उसके हजार रुपया हाथ में डाल देंगे, वो उसे खाली करना है बस। क्योंकि जहां पर सैन भगवान विराजमान है, लक्ष्मी धाम जिनके पास है, द्रौपदी तो लक्ष्मी है, और सैन कृष्ण भी तो सैन भगवान है, क्या उसके राजकोष खाली कहीं कर सकते हैं? एक कबड़ा उठा ली तो देखते देखते कहीं दस कबड़ा अपने आप कहा बंदी हो जाता है। चलो आइए कथा में। युधिष्ठिर महाराज भगवान के एक प्रश्न पूछा, ये प्रभु मैं जो राजस्व यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा राजस्व यज्ञ सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया? भगवान कहते हैं एक काम करो, तुम्हारे राजस्व यज्ञ में जब यज्ञ होगा ना, वहीं पर एक घंटी बना लगा देना, घंटी है ना घंटी, वो घंटी तुम्हारे यज्ञ सक्सेस हो जाए सूर्यास्त के पहले, वो घंटी अपने आप ढंग 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 वो बजेगा, तो वो तब समझना तुम्हारे यज्ञ पूरा। चलो जहां पर संत महात्मा यज्ञ आदि करे स्वाहा 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 वहीं पर जाकर के सैन भगवान विजय घंटा बन दिया, विजय घंटा समझ दिया। प्रातः काल से बड़े बड़े राजा लोग भी आने लगे, सभियों के अर्जुन सम्मान आदि करने लगे, भीम द्रौपदी सुंदर सुंदर सजिष्ट पकवान आदि बनाने लगे, और सब बना करके भगवान के भोग लगा करके सबको खिलाने लगे। बड़े बड़े मुनि लोग ऋषि लोग आकर के जपना आदि करने लगे, स्वाहा स्वाहा चल रहे है, बहुत सुंदर रूप में सब कुछ चलते जा रहे। दुर्योधन दुशासन दाम दक्षिणा देते जा रहे हैं, गेट पर खड़े हुए हैं, कौन दुर्योधन दुशासन राजकोष वहीं पर रख दिया, जिसके जितना चाहिए ले जाएंगे। कोई कहते हैं ये मुझे एक कपड़ा चाहिए, दुर्योधन वैसे गिरा दस कपड़ा उसके हाथ में दे ले जाता। कोई कहते हैं मुझे एक रुपया चाहिए, और दुर्योधन उसके हजार रुपया उसके दे देते, थैला भर करके ले जाते। लेकिन उनके तो उद्देश्य है क्या, दुर्योधन दुशासन का उद्देश्य क्या है? और इधर परपास दुर्योधन दुशासन राज उसको खाली कर देना, लेकिन उसके पता नहीं था जहाँ पर संचार लक्ष्मी सर्वणी द्रौपदी विराजमान है, जहाँ पर संग भगवान नारायण विराजमान है, क्या वो खाली कर सकते? भाई दान देते देते दुर्योधन दुशासन के तो बिल्कुल हाथ क्या हो गया, दर्द हो गई। देते देते करते देखा तो राजकोष जैसे ही तैसे पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं हुआ। दस कपड़ा उठाया तो फिर कहां से सौ कपड़े कहां से भर्ती हो जाते। दुर्योधन दुशासन तो हैरान हो गया, बोले क्या बात है, अब तो एक गोडाउन भी अभी खाली तो नहीं, अभी तो दस गोडाउन भरा हुआ है कपड़े और चांदी सोना सब। एक गोडाउन जो है अभी तो खाली नहीं हुआ, सुबह से दोपहर तक हो गया कुछ नहीं, और सभी लोग चलते जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के जय जय कार देते जा रहे हैं, बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। सब लोग भगवान के जय जय कार दे रहे, युधिष्ठिर महाराज के जय जय कार देते जा रहे, सभी लोग के मुख में एक ही शब्द क्या, किंतु युधिष्ठिर महाराज की तो बात सिर चक्कर आ गई। क्यों? पर सब तो जय दे रहे हैं, किंतु आदमी विजय घंटा तो नहीं बुझ रहे, हजारों लोग प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यदि विजय घंटा नहीं बजे तो समझना चाहिए हमारे यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इतने करके फायदा क्या हुआ, हजारों लोग आपकी प्रशंसा करें। यदि गुरु और भगवान की आपकी प्रसन्न नहीं हो, मतलब हजार लोग के प्रसन्नता से आपके क्या होता है, और रघुनाथ दस बिलाप कुसुम मंदिर में कीर्तन कर राधे यदि आप प्रसन्न नहीं हो, हजार लोग मुझे प्रशंसा करे, मेरे ज्ञान वैराग्य को मुझे भक्ति की प्रशंसा करे, उसमें क्या है? क्यों हम प्रसन्न उसमें हमारे क्या होता है? हे राधे, यदि आप प्रसन्न यदि नहीं हो, आप प्रसन्न होकर मुझे कृपा नहीं करो, हजार लोग प्रशंसा करते रहे, उससे हमारे क्या फायदा है? है कुछ लाभ? हजारों लोग आपके फूल की माला दे दे, किंतु राधा जी आपकी कृपा नहीं करे, तो प्रशंसा फूल की माला की कभी बजे कुछ नहीं। युधिष्ठिर महाराज की वही कहानी जा रही, सब लोग तो युधिष्ठिर महाराज के जय जय कार देने जा रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे, मेरे जगह तो पूरा ही नहीं हुआ। क्यों? बजाय घंटा अभी तक बजाय युधिष्ठिर महाराज देखने लगे, सूर्य अस्त होने को होते जा रहे थे, नीचे सूर्य देवता जो है नीचे झुक गया, एक घंटा दो घंटा रह गया, शाम होने वाले हैं और सूर्य अस्त के बाद जगन बंद हो जाएगा। दो घंटे के बाद दो घंटा रह गया, युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे, उनके तो आंख केवल जो है विजय घंटा के बाद देख रहे हैं, कब विजय घंटा कम से कम डंग डंग बजे, जो युधिष्ठिर महाराज कहते आज मेरा जगन हो रहा, किंतु घंटा नहीं बजे, घंटी तो नहीं बजे। हम लोग के जीवन की घंटा बजते रहते हैं, शुरू हो जाता है कहाँ से? कान से। बाल कहाँ से सफेद होता है जानते हो क्या? देखें ना, बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाता है। माने यहीं से आपको वार्निंग दे देते हैं, पहले वाले स्टेशन में जो है वो एक घंटा बजता था, ट्रेन आ रही है, ठीक उसी प्रकार हम लोग की जो है मृत्यु की घड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। क्या स्त्री हो पुरुष हो ना, यही से ना बाल सफेद होना शुरू कर देता है, बस मृत्यु की घंटी जो है बजना शुरू कर दे। युधिष्ठिर महाराज देखा घंटी तो नहीं बज रहे, हमारे जांच सोचे को कैसे कैसे पता चले? युधिष्ठिर महाराज देखा तो केवल रह गया एक घंटा, रह गया दो घंटा, एक घंटा केवल रह गया, सूर्य अस्त होने वाला है, झुक गया, लाल लाल लालिमा भी होने वाला है। युधिष्ठिर महाराज देखा मैं क्या करूं, युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान कृष्ण के निकट जाकर के बोले, हे गोविंद हे कृष्ण, सारे विश्व के लोग तो मेरा जय जयकार दे रहे हैं, किंतु मैं दुखी। क्यों? मेरे विजय घंटा तो नहीं बज रहे, अभी तो थोड़ा सा आधा घंटा रह गया, मानो सूर्य अस्त हो जाए तो संत संत महापुरुष जब को बंद कर देंगे, प्रोग्राम ही हो जाएगा, विजय घंटा तो नहीं बजे, तो मेरा फैक्ट्री फल क्या है? इतने पैसा खर्च किया, इतने जो कुछ भी मैंने श्रम किया, सब क्या होगा? बेकार हो गया है, जैसे घी छाई में, छाई भस्म में आहुति देने से क्या लाभ है? भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारे विजय घंटा नहीं बज रहे, अभी तक नहीं बज रहे, अभी तक कोई एक संत महात्मा नहीं आया, उस संत महात्मा आकर के तुम्हारे जग में राष्ट्र जग में भाग ले रहे तो तुम्हारे विजय घंटा बजेगा। अरे कौन संत महात्मा अभी नहीं आया? भगवान कृष्ण भीम के बोले, भीम तुम जाओ छानबीन करके आओ, कौन संत महात्मा? भीम गदाधारी बद बलवान, गदा लेकर के चल पड़े, कौन संत महात्मा नहीं है? उसको मैं हाथ में ऐसे उठा करके ले जाऊ, भीम तो हनुमान की भी अवतार है ना, थोड़ी सामान्य है, पूरा इसको उठा लेते हैं, पार की उठा लेते हैं, बोले संत महात्मा क्या उसे जहाँ पर मिट्टी पर बैठे हुए हैं सब पृथ्वी के सारे उठा करके मैं लेकर जाऊंगा। भीम जी इधर उधर चलते चलते छानबीन करते करते देखा एक छोटा सा गोली था, गली समझते हो, एक संत महात्मा बैठ करके राम 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 कर रहे थे और उनके सारे शरीर में खुजली हो गया, खुजली खुजला रहे थे, राम 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 जप कर रहे थे। हनुमान जी के भीम जी आकर के बोले, संत महात्मा दंडवत प्रणाम। बोले क्या बात हुई, आज हमारे पास कैसे आ गए? भीम जी बोले, महाराज आप राजस्व मेरे राजस्व जो तुम्हें भाग नहीं दिया, प्रसाद नहीं किया? संत महात्मा बोले, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं किया, क्या पतो है, मैं इस गली में पड़ा रहता हूँ, अंधेरा गली में पड़ा रहता हूँ, शरीर में खुजली हो गया, मैं राम राम करता हूँ, अरे गली में पड़ा रहता हूँ। भीम जी बोले महाराज आइए चलिए आप हमारे राजस्व युग में भाग लीजिए, मैंने प्रसाद ग्रहण। संत महात्मा बोले अच्छा ऐसी बात है ना, युधिष्ठिर महाराज के राजस्व युग का चल रहे हैं, अभी थोड़ी बाद में तो बंद हो जाएगा आधे घंटे बाद, आप समय के अनुसार आप आइए। संत महात्मा बोले देखो मैं तो जा सकता हूँ, मैं ऐसे एरे तेरे संत महात्मा नहीं हूँ। अरे बात क्या, बोले देखो मैं उस स्थान पर मैं जाता हूँ जो मुझे अच्छी कस करके दक्षिणा देता है, बिना दक्षिणा से मैं नहीं जाता हूँ, साधारण दक्षिणा नहीं है। बोले अरे भीम जी बोले महाराज क्या बात है, जहाँ पर दुर्योधन दुशासन है आपके क्या चाहिए, 10 गोडाउन भरा हुआ है, सब सोने चांदी कपड़े लगते जो कुछ भी है, 10 गोडाउन अभी भरा हुआ है, अभी दुर्योधन दुशासन एक गोडाउन के भी समाप्त कर नहीं पाया, महाराज आप चलिए सोने चांदी से आपके भर देंगे। संत महात्मा बोले भाई ऐसे सोने चांदी लेने वाले संत महात्मा नहीं, मैं जो दक्षिणा के बात कर रहा हूँ तुम समझो। बोले क्या देना चाहते, बोले देखो 1000 जगह के जो फॉर्म थे ना, क्या बोले राजस्व जगह जगह से जो फॉर्म होता है वो मुझे चाहिए, ये सोने चांदी पैसा ये रुपया ये दान दक्षिणा में देता हूँ उसके फल। भीम बोले ये तो पहली बार राजस्व यज्ञ को हो रहे हैं, आप ये दान कैसे दे रहे, बोले तब तो मैं नहीं जाता हूँ ना, तुम्हारे यज्ञ में भाग ले सकता हूँ। भीम मन मन विचार करने लगे, एक बार भीम जी मन विचार करके सुन तो मत कहता बाएं हाथ में उठा करके ले जाऊ ऐसे मिट्टी समेत, इनको साधारण व्यक्ति है, मैंने कहा हनुमान क्या बता रहे ना है? जो पहाड़ के उठा करके ले है हनुमान जी, हनुमान विचार मनी मन विचार करने लगे भीम जी, अरे संत महात्मा क्या बोल रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं दान दक्षिणा के बात कर रहे हैं, इसको मिट्टी समेत ऐसे हाथ खोल दू, मिट्टी समेत किसी उठा करके नहीं देता रख दू। फिर मनी मन विचार करने लगे जी ऐसे संत महात्मा बात बोलने वाला है, ये 1000 के फल मांगने वाले ना जाके मुझे छाइपस मना करते हिसाब से निपी कर रहे, इसलिए भीम जी अपने क्रोध के किसी प्रकार जो है रोक लिया। पहले तो सूर्य गुस्सा हो गया जी संत महात्मा को, मैं ऐसे महल में उठा करके निकल गया, तो मानी मानी विचार करने लगे जो संत महात्मा ऐसे बात बोलने वाले हैं ये कोई साधारण संत महात्मा तो है, जो रुपया चांदी और वो कुछ चाहने वाला नहीं, से जीवन में कोई चाहवत नहीं संसार की है, तो निराला संत महात्मा, निराला समझते क्लिनिक, ये तो कोई निराला संत महात्मा लौट करके आ गया, भगवान कृष्ण के निकट समाचार दिया, भीम जी बोले प्रभु मिल गया था संत महात्मा है जो अभी तक ये राजस्व यज्ञ में भाग नहीं लिया, किंतु वो संत महात्मा चाहते हैं क्या 1000 राजस्व यज्ञ की फल चाहते हैं, अभी तो पहली बार हो रहा है राजस्व के फल कैसे दिए। भगवान कृष्ण बोले भीम तुम बैठ जाओ, तुम्हारे तरह काम नहीं होगा, समय तो चलते जा रहे हैं, मानो 15-20 मिनट रह गया। द्रौपदी के बुलाया, द्रौपदी के बोले द्रौपदी तुम जाओ संत महात्मा के निमंत्रण करके ले आओ। द्रौपदी नंगे पैर में खाली पैर जूता जूता से कुछ कुछ नहीं पाए, नंगे पैर में चलते चलते संत महात्मा निकट पहुंचे। द्रौपदी जाकर के बोले संत महात्मा आइए हमारे राजस्व यज्ञ, हमारे पति लोग जो है राजस्व यज्ञ कर रहे, उस राजस्व यज्ञ में आप निमंत्रित है और आप राजस्व यज्ञ में भाग लीजिए, अरे प्रसाद दिख रहा। संत महात्मा खुजलाते खुजलाते बोले दक्षिणा की व्यवस्था किया कि
द्रौपदी हंस के बोले महाराज कितने दक्षिणा चाहिए।
फिर संत महात्मा बोले 1000 राजस्व जग की जो फल जो है वो मुझे चाहिए।
द्रौपदी हंस करके बोले महाराज सब कुछ तैयार है,
जो आप चाहते जो दक्षिणा आप चाहते हैं अपने सब कुछ तैयार है। संत महात्मा ने अभी तो भीम आ रहे आया बोले ये पहली बार राजस्व जग है और मेरा तो चाहवत क्या कितना 1000 राजस्व जग की फल तुम कैसे दे दोगे।
द्रौपदी बोले महाराज आप संत महात्मा
सारे वेद पुराण उपनिषद तो आप जानने वाले हो, पहले पहले संत महात्मा होते थे ना, ऐसे तेरे तेरे संत महात्मा नहीं होते थे। मुड़ मुड़ाए भय सन्नासी, पत्नी मर गई बिजनेस ठप हो गया, ठप समझते हो, फेल हो गया है, बैंक बैलेंस सब चला गया, तो क्या करे। मुड़ मुड़ाए भय सन्नासी, तुलसीदास की मुड़ मुड़ाए भय सन्नासी, क्या करे, पत्नी तो चली गई मर गई छोड़ करके चली गई, कोई तो एक होगा, पत्नी चली गई, घर में आग लग गई, बिजनेस ठप हो गया, तो क्या करे, मुड़ मुड़ा देते सन्नासी बन गया। प्राचीन काल के जो इतिहास मैं बता रहा हूँ, प्राचीन काल में जो सन्यासी होते थे संत महात्मा होते ना, वो संस्कृत बड़े बड़े विद्वान होते, शास्त्र ज्ञान सिखाते, गुरु गृह में उसके 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य पालन करके समस्त शास्त्र आदि अध्ययन करना पड़ता था। आजकल तो बस केवल बिजनेस बन गया, धप्पा कपड़ा पहन लो, भीख मांग लो और मंदिर बना लो और करोड़ संपत्ति के बना लो, माल खड़े है? ये कलिजुग होता है, कलिजुग में ऐसे होता है नहीं। संत महात्मा तो वही हो सकता है यथार्थ संत भगवत भजन आदि करे, शास्त्र में ज्ञान होना चाहिए है? शास्त्र की ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, बस उल्टी सीधी लोगों के करके इधर उधर के बस सिर पर हाथ लगा करके बस हो गया, ऐसे नहीं होता। प्राचीन काल में हमारे भारत को भारतीय सभ्यता संस्कृत के संत महात्मा उसी कहा जाता है, कम से कम 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन गुरु गृह में रहा करते, कठोर तपस्या आदि गुरु सेवा से करते, गुरु की कृपा से शास्त्रीय सारे शास्त्र समस्त संस्कृत ज्ञान अर्जन करते, तब उसके संत महात्मा पद भी दिया जाता है। कलिकाल तो ऐसे नहीं, इसलिए कलिकाल में क्या होता है, सब फपड़ से फपड़ बाबा कहा जाता है, फकड़ बाबा बोगस इधर उधर के कथा सुन लिया है, कोई शास्त्र के ज्ञान नहीं है, इधर उधर के इधर के उधर उधर के उधर बस हो गया साधु बन गया है, लोगों की ठगाना। इसलिए धीरे धीरे कलयुग में लोगों के भी साधु संत महात्मा में विश्वास भी उठ गया है, क्यों दोष क्या है, शास्त्र तो अध्ययन नहीं किया, सदगुरु तो चरणाश्रय नहीं किया, सब फकड़ से बाबा, फकड़ बाबा वृंदावन में जाए ना, एक मंदिर है उसके मंदिर के नियामी है फकड़ बाबा मंदिर, फकड़ बाबा लक्कड़ बाबा ऐसे सब है, सब है ये समस्त क्या है फकड़, सब कलिजी पे सब दुष्ट है, इसलिए लोगों की श्रद्धा भी हट गया। इसलिए आजकल जो अच्छा साधु जो है और जो फक्कड़ साधु है लोग उसके सब ही एक बराबर समझ में, जो अच्छा साधु है उसके लोग इतना आदर नहीं करते, जो जितना काल बजावे पंडित कहावा तुलसीदास जी करते रामचरितमानस पढ़ो, कली काल में जो जितना उल्टा सीधा बोल सकता है, है? लोग उसके अच्छा साधु बनेगा, मोटा हो जाए बस खा पी करके लंबी दाढ़ी रख लो छोटा झूठ बना लो है, हाँ ये अच्छा लोग बैठ रहे ऐसे कर, पेट इतना बड़ा हो गया लोग उसके साधु मान दुबले बदले है, ये साधु साधु थोड़ी है, ये साधु साधु तो वही है मोटे होना चाहिए,
सब कड़वावा सब चलो कथा तो यह द्रौपदी उसी प्रकार भी करने लगे संत महात्मा. आप तो सारे वेद पुराण उपनिषद के जानने वाले हैं. आप मुझे कहा 1000 अश्वमेध जगत की कौल चाहिए आपके देने के लिए मैं तैयार हूं. और आपके मन में संशय हो रहा कि मैं कैसे दूं, ये तो पहली बार राजस्व देते हैं. क्या संत महात्मा क्या एक शास्त्र के एक श्लोक के आप भूल गया याद है? संत महात्मा दैन कर बोले द्रुपति तुम बताओ क्या. संत मिलन के चलिए तज अभिमान जो जो पद आगे धरे उड़ीन जग समान. तुलसीदास चित पढ़ो इसके अच्छी तरह से. मैं झूठ बोल रहा हूँ देख लो आप. संत मिलन के चलिए तज अभिमान जो है संत मिलन के चलिए तज अभिमान जो जो आप जो जो पग आगे धरे कुटीर जग के समान. मतलब जब कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के अभिमान को त्याग दे करके समस्त अभिमान है विद्या के अभिमान कुल की अभिमान जन्म की अभिमान जितने प्रकार अभिमान सब कुछ त्याग दे करके संत महात्मा निकट जाते हैं जाती है. जब एक पैर रख करके दूसरे पैर रखते हैं बड़े सैकड़ों जग की महिमा से प्राप्त हो जाता है. संत मिलन के चलिए तज अभिमान जज पग आगे धरे कठिन जग समान. तुलसीदास की दोहा है. संत एक पैर मैं बार बार बता दूंगा आपको देख लेना. संत मिलन के चलिए तज अभिमान जज पग आगे धरे कठिन जग समान. एक नहीं एक पैर रख के दूसरे पैर जब रखते हैं बोले सैकड़ों जगह की फर्श के प्राप्त हो जाता है. द्रौपदी हंस करके कह रही महाराज आप मैं तो पूर्ण नारी हूं सती अपने समस्त प्रकार के अहंकार को त्याग देकर के आपके साथ मिलने के लिए मैं आई हूँ निमंत्रण देने के लिए मैं चल करके आई हूँ. आप बताइए तो मेरे सैकड़ों जगह की फर्श मुझे प्राप्ति है कि नहीं है मुझे है कि नहीं है बताइए. संत मिलन उस समय संत महात्मा हंस करके बोले द्रौपदी तुम धन्य हो. इसलिए हमारे शास्त्र में वर्णन है प्रातः काल में